यहाँ पर पिछले बने भारतीय मैदान में जरूर कोई यहाँ पर मामला बेहद है, मालूम होता है कोई शिकारी यहाँ आया है और जाल फैलाया है, उसने रख दिया है, जाएगी तुमको पकड़ लेगा। मैं नहीं जा सकता। उसने कहा आपको षड्यंत्र की सूत्रों की तत्व में पूरा दी है लगी जाती है सर। मैं षड्यंत्र में कहाँ है और फिर रोड़ी और जाकर के चुनने लगी। जब चुनने लगी तो वो वही से तो राजे के लिए मेरी बात मानती है और वो चुनने में मशगूल हुई। इसने में एक मोटे तगड़े और काले मुसंड एक शिकारी ने क्या करना तेज की आग में खड़ा था, उसकी रस्सी उसके हाथ में कुछ झट फेंक दिया और उसके अंदर लगे। अब तो बिंद लाने बहुत जोर से बिंद लाने। उस समय में जो पुरुष ऊपर में बैठा था वो कह रहा है मैं मर जाता कोई बात नहीं, बच्चों का पालन मैं नहीं कर सकता, किंतु ये बच्चों का पालन कर लगी मैं ग्रहण नहीं रहने से भी है मेरी मृत्यु आ जाएगी किस प्रकार से बच जाए। और ये करता हुआ खुद उड़ करके उसके पास आ गया, एक जल में जाल में आबद्ध और दूसरा वो जाल के बाहर दोनों रोने लगे थे। रोते रोते इतने उसमें आसक्त हो गए रोने में, शरीर की चित बुद्धि भूल गई और वो हंसी हंसता हुआ ताली बजाता हुआ धनुष बाण लेकर के और ऐसा मारा कि ये इस पार से उस पार हो गया, वो छट पट पड़ता हुआ वो भी। अब वो ताली बजाता हुआ आकर के इस मरे हुए कबूतर को और कबूतरी जो जाल में पड़ी हुई थी उन दोनों का पैर जीवित और मरे दोनों को एक साथ में बांध दिया और जाल यहां रख करके घर गया और आग में सेक साथ करके दोनों को। तो वो कह रहे हैं अंगीकारी थी और नाम थी, अरे देखो क्या गति हुई तुम्हारे सिर पर भी, मृत्यु मर आ रही है, न जाने कब आ जाया तुमको चपेटा घात करने। तुम तो सब लोग जैसे कबूतर ने देखा मृत्यु, उसने मृत्यु देखा नहीं, अंत में दोनों गए। उसी प्रकार से मृत्यु सब समय है प्रतीक्षा कर रही है, कम मर जाएंगे कोई चीज नहीं, इसके पहले ही भगवान का भजन कर लो, शुद्ध गुरु पदार्थ तय कर करके जैसा अम्बरीश महाराज इत्यादि ने किया था और ने किया था। नारद जी ने कहा जैसा रहो, अपने बच्चे के सिर पर पेट पर हाथ रख दिया छाती पर, अरे बेटा तुम क्यों सो गए, उठो 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 उठो, और वो उठ करके बैठ गए। अरे तुम्हारे माता पिता यहाँ रो रहे हैं और तुम कहीं कहाँ चला गया, कौन माता पिता, अरे न जाने कितनी बार ये मेरे माता पिता हुए, मैं इनका कितनी बार माता पिता हुआ, हम नारे माता पिता को एकमात्र कृष्ण नहीं है दूसरा है। और मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मैं जीवित रह करके इनके पास नहीं आना चाहता हूँ, मुझे भजन का सुयोग मिला है अब तो मैं वही जाऊंगा उसी। बस मैंने कहा आप कहिए तुमको पुत्र आप नहीं, तब ये चित्र के जी और उनकी पत्नी रोते रोते उनके चरणों की ली और उनको उन्होंने खबर मंत्र में दीक्षित किया और वो भजन करने के लिए बनने चले गए। और तो हजारों रानियां लाखों रानियां थी, अब समझी जी हमने ये कितना बड़ा भारी पाप किया, वो भी नारद ऋषि के पास में पहुंचे, उनको भी सुदेश दिया जी कि भगवान का भजन करो तो ये पाप शुरू होगा और भगवान की भक्ति उनको भी। यही चित्र के महाराज जब परम मुक्त होकर के चारों तरफ में उनकी गति होने लगी, ऐसे ही जहां इच्छा तहां भगवत धाम में इत्यादि में जाते। एक दिन किसी कारण से हमारी उमा पार्वती जी ने इनको अभी संपाद दे
आधा घंटा बाकी
आधा घंटा बस। अच्छा ठीक तो ये तो मैं बतला दूं। तो एक दिन घूम रहे थे अपनी इच्छा से, सोचा कि कैलाश में चलूं, हमारा गुरु भाई वहां पर शंकर है उससे जरा ले जाऊं, कुछ भगवत कथाएं सुने हुआ मैं भी सुनाऊंगा उनको, बड़ा प्रेम मुझे था। कैलाश में वहां पर उपस्थित हुए, देखा क्या शंकर जी नंद धंग पड़े हुए हैं, और उनकी गोदी में परम सुंदरी उमा जी हैं। कैसी सुंदरी हुई आप अनुमान लगाइए, बड़ी सुंदरी गोदी में लिए हुए हैं और उसके कंधे पर अपना सिर रखे हाथ रखे हुए और देवताओं की और ऋषियों महर्षियों की सभा में भगवत तत्वधारण कर रहे हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि लोग ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी भक्त सभी लोग जुटे हुए हैं, लाखों लोग ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं और लोग सब बैठे हैं। चित्रकेतु महाराज जी वहां पर आकर के मन मन में उनको प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम करके बोले अरे भाई लोग का भी चित्र विचार रखना चाहिए, तो नंग भड़ंग होकर के बोल और अपनी सुंदरी नवज्योति किशोरी स्त्री को गोदी में लेकर के उपदेश दे रहे हो, इससे क्या इन पर प्रभाव पड़ेगा। ये लोग भी तुम्हारी बातें ऐसे से नहीं सीखे, ऐसे उनसे दिल की सूची पार्वती जी बिगड़ गई। अरे ब्रह्मा जी और नारद जी को उपदेश नहीं दे रहे हैं और तुम इनका भी गुरु होकर के आया, हमारा गुरु बनकर के आया, ऐसा कर रहा है जहां तुमको अभी संपाद देते हैं, सब आज तुम गुरु जाओ। कहते हैं इन्होंने एव मस्तु अम्बरीश वो बोले उनके लिए नरक और स्वर्ग कोई या बैकुंठ उनके लिए कोई अंतर नहीं आता, जहां रहेंगे वहीं पर भक्ति करेंगे। ऐसे सुंदर महाभागवत के भी ऊपर मुक्त पुरुष है। शंकर जी बोल उठे हाय तुमने क्या क्या देवी सुश्रोण बहुत ही सुंदर तुम हो, सुंदरता का अभिमान में इन महाभागवत के भी ऊपर चित्त भक्त इनको तुमने समझा नहीं, भगवान के भक्त हमारे गुरु भाई हैं, हमसे दिलगी करने का इनको अधिकार है, हम भी इनसे दिलगी कर सकते हैं और तुमने अभिमान में मत हो सकते ऐसा कर दिया। ये बहुत तुमने कहा यदि ये तुमको भी पालिका में उसने अभी संपात कर देते तो तुम्हारी क्या गति होती, यदि समझते हैं तुमको अभी संपात देने और देखो तुम्हारे इस अभी संपात को उन्होंने अंगीकार कर दिया, स्वीकार कर दिया, तुम स्वीकार कर देंगे, यदि आप स्वीकार कर दे तो वो अभी संपात तुम्हारे पढ़ने पड़ता, कैसे आप रुपया मुझे दे रहे हैं मैंने नहीं दिया, ये रुपया तुम्हारा कोई अब आपको गाली दे रहा है आप कुछ सुने नहीं तो वो गाली क्या होगी, कान और सती जाए जो दे रहा है उसी के पास। यदि कोई अभी संपात दे रहा है उसने कहा कि हम अभी संपात नहीं लेंगे या अभी संपात तुम्हारे नहीं आ रहे तो अभी संपात जरूर उन पर लग जाएगा, फिर उनके महात्मा ने की कहता ये ज्ञान निधि रूप में जाएंगे कि भक्ति नष्ट नहीं होगी। हुआ क्या इसके बाद में चित्रकेतु महाराज जी मुक्त महापुरुष हैं, वृक्षा के रूप में जन्मे और जन्मे का बड़े भारी असुर के दैत्य दान ऊपर से तो हुए किंतु भीतर में परम उन्नत कोटि की उत्तम भक्ति के भी जन्म दिया और उस समय में इंद्र के निकाजी से होगा और इंद्र जिस समय वज्र लिए हुए इसको मारने के लिए वज्र को ऋषि दधी की ऋषि के हाथ से बना था, देवता लोग मांग करके लाए वज्र बन उससे एक धनुष बना जो रामचंद्र जी ने तोड़ा था शंकर का और उसी से वज्र बना था, वज्र उसको मारने के लिए छोड़े किंतु उसने अपने गदा से उसको ऐसे मारा उससे जो वो गदा उनका वो वज्र भी गिर गया। अब उठाने में उसको संकोच हो रहा है अरे जल्दी से मारो जल्दी से मारो हमें ये अपवित्र योनि हमारी दूर हो जाए, भक्त लोगों से मैं दूर रहता हूं मैं भक्ति कर नहीं पाता अनुष्ठान रूप में इसलिए जल्दी से मारो। जब वज्र नहीं गाय तो बोले अरे तुम क्या मुझे मारे, तब भगवान से मन मनी कर हे प्रभु जल्दी से हमारा कर चुके मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा, मैं अपने दिनों से मैं भगवान की सेवा में मन से चिंतन करूं, इस प्रकार से भगवान से करने की प्रार्थना। हमें मुक्ति की जरूरत नहीं है, हमें पृथ्वी का राज्य इत्यादि की जरूरत नहीं है, पृथ्वी का सार्वभौम राज्य होने के लिए हमको जरूरत नहीं है, इसलिए तन मन और वचन ये तीनों के भगवान की सेवा में भी तुप्त हो जाऊं। और इसके लिए उन्होंने कहा अजात पक्षा मा परमेश्वरा तन्ने यथा भक्त कर सुधार प्रिय सुवीर विचितम वचंगा मनोवृद दास। जिस प्रकार से अजात पक्षा मा पर जिस प्रकार से वो पक्षी जिनको दैने नहीं लगे हैं पर नहीं लगे वो क्या करते हैं यदि मैया कहीं चली जाए तो वो डरते हैं अपनी मैया को कीर्तन करते हैं मैया कब आ जाए तो जो दूसरी उल्लू इत्यादि पक्षी जो उसको खा जाते हैं उनका डर भी दूर हो जाएगा वो कुछ लाएंगे तो खा लेंगे। तो वो जो पक्षी जो कीर्तन करता है वो किसके लिए कीर्तन करता है वो मैया के मैया के किसके लिए नहीं मैया आ जाएगी हमारा डर भी दूर हो जाएगा और मुझे खुराक भी मिल जाएगी। तो कहते हैं कि भगवान को तो वो पुकार रहे हैं चिंतन कर रहे हैं किंतु अपने डर से चिंतन कर रहे हैं डर को दूर करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए इसमें तो कुछ स्वार्थ है। इसलिए दूसरी प्रार्थना है हजार स्वच्छ आई मां कर्म हजार तन्ने जमा भक्त का सुना। अब ये वचन के लिए आए क्या जैसे भूखा हुआ बछड़ा शाम को भैया के आने पर वो दौड़ता है भैया के तरफ में उसका दूध पीने के लिए और गांव गांव करता है वो बता होता है सूखे पर उसका मालिक खोलना चाहता है कि इसकी मैया आ गई अब दूध दुहाना है तो कूटा के खोलना चाहता है कि उसने जोर से दो पहले पर वो खड़ा हो जाता है मैया के तरफ में जो वो खोल नहीं सकता बछड़े को पकड़ करके जल्दी से खेच करके ढीला रस्सी करके तब उसको खोलता है। अब ये खोलने के साथ में डांडा करता हुआ मैया के पास में स्तंभ देता है। तो क्या भगवान को इसीलिए तुम बुला रहे हो कीर्तन कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए नतीज के लिए कीर्तन कर रहे हो कीर्तन भी मैया का कर रहा है तो भगवान का कीर्तन भी कर रहे हो किंतु इसमें स्वार्थ है दूध के लिए बछड़ा ऐसा करता है तो क्या भगवान के लिए ऐसे दूध की अर्थात तो अपने किसी स्वार्थ के लिए कर रहा है अरे नहीं प्रिया प्रिय विदुतम प्रसन्ना जिस प्रकार से प्रिया अपने प्रियतम से भी छोड़ने पर उसके लिए चिंता करती है उसके लिए अपने बच्चे को उनका गुणगान सबसे बड़े विकार है बाहर रहते हुए भी हमारा कितना ध्यान रखते हैं उनके गुणों का अनुवाद करती है उनका चिंतन करती है और अभी तुरंत आने वाले हैं उसके लिए शीतल पानी रखती है पंखा तैयार रखती है सेवा की भावना भी रहती है। उसी प्रकार से भगवान के चरणों में हमारी ऐसे रति हो जैसे उस प्रेरिता जो इसकी है उसके समान डाटा पुकार कैसे भगवान के लिए पुकारो कैसे बछड़े के समान और पिता को पक्षी जैसे एकाग्र होकर फिर मैया की चिंता हमको मुक्ति इत्यादि चित्रकेतु महाराज जी इस प्रकार से करते करते जब आविष्ट हो गए तो बार बार कहने के बाद में सब पिताश्रु को इंद्र ने बदल के मारा योगी लग गया कितने हजार वर्ष एक वर्ष दो वर्ष आज इसका पाप पाप लगा उनको ऐसे भक्तों को मार तो ये किसी के भी मारा ये कृपक है वो कह करके भी हम लोगों को शिक्षा देने के लिए चित्र के तुम महाराज है आप लोगों ने बिल्लो मंगल का नाम सुना है बिल्लो मंगल कैसे थे अपनी आंख खोली ना भगवान के लिए कृष्ण उनको लट्टिया पकड़ करके वृंदावन में लाए ज्ञान दूसरों को दर्शन दिए ज्ञान दूसर ने उनको दर्शन दिया बहुत सुंदर कथा है मैं इसे कल बतलाऊंगा और इसके बाद में अब हनुमान जी इत्यादि गोपियों की कथाएं उद्धव जी की इसमें आएगा कि यहां पर उसमें वर्णन किया गया है मैं क्रम अनुसार से बतला करके भक्ति का बतलाऊंगा जिससे कि आप लोग अंतिम दृष्टि में समझ करके भगवान का करें।
है मेरे वर्णन का
भक्ति कार्य से निर्मल शुद्ध भक्ति का हुआ होता है जिसके लिए हम लोग साधारण करके पांच प्रकार के भक्तों का हम वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें ज्ञान भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेम पर भक्त और प्रेमात्म भक्त यहां तक पांच हैं। ज्ञानी भक्त को सुन लो ऐसा मत समझ लेना कि जो लोग कहते हैं कि मैं वेदांत जानता हूं भगवान निराकार है निर्विशेष है आरूप है जो लोग ऐसा मानते हैं संसार को झूठा मानते हैं इन लोगों को यहां पर ज्ञानी भक्त नहीं कहा गया ये पहले समझो ये लोग भक्तों भक्ति के चरणों में अपराधी हैं। यदि कोई भगवान को निराकार मानता है उनका रूप नहीं मानता है उनका गुण नहीं मानता है उनकी दया को कृपा को भी नहीं मानता जगत को झूठा मानता है भगवान कृष्ण की राम की शक्ति लीलाओं को वो झूठ मानता है तो भक्ति में कहां क्या है वो सेवा कहां उसकी है। इसलिए ये लोग भक्त के किसी भी श्रेणी में नहीं आए हैं बल्कि भक्ति के विरोधी हैं। ऐसे लोगों को सुख से दंडवत करना निकट में नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि नमो नारायण आप नारायण हैं आपको नमस्कार है ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। सभी नारायण नहीं है सभी गोविंद नहीं है इस चीज को समझो। गोविंद हमारे अंदर में है किंतु हम गोविंद नहीं हो सकते हैं। सियाराम में सभी जगह ज्ञानी करो प्रणाम ज्योति पानी सियाराम में सब सत्य बच्चो सिया और नाम मत समझो किसी को सिया और राम नहीं है दूसरा कोई नहीं सिया राम हो सकता। जब भरत लक्ष्मण नहीं हो सके सिया और राम हनुमान जी सप्त में सारा जीवन उनकी सेवा की तो और दूसरा कैसे सिया और राम हो सकता है जो ऐसा कहते हैं कि तुम सिया और राम हो वे भक्ति के चरणों में राम के चरणों में कृष्ण के चरणों में अपराधी हैं। इसे को समझने की भरपूर चेष्टा की बाढ़ आ गई सब कुछ जलमग्न हो गया पेड़ पौधे डूब गए घर डूब गया चारों तरफ पानी पानी दिखता है इसको कहते हैं जल में क्या पेड़ इसमें जो डूब गए क्या वो पानी बन गए उसमें घर वालों और जो थे आदमी थे उसमें डूब गए तो क्या वो पानी बन गए कोई भी पानी नहीं बनेगा भाई जो कुछ बना है उनसे पिया और आम से बना है कृष्ण से बना है। इसलिए उच्च कोटि के भक्त लोग सर्वत्र ही सिया राम को देखते हैं सर्वत्र घड़े में पानी है किंतु खड़ा पानी नहीं है इस चीज को समझो। तुम्हारे अंदर में भगवान राम है कृष्ण है किंतु तुम राम या कृष्ण नहीं हो। अच्छा मान लिया कि तुम सियाराम का ऐसा ही अर्थ करते हो जो सिया और राम है या कृष्ण से तुम कृष्ण को देखो तो सिया और राम तो दो है तो तुम उसमें कौन सा रूप में देखते हो सिया को देखते हो या राम को देखते हो। इसलिए यह सब बातें गलत है। कोई भी जगत का आज तक दूसरा कोई व्यक्ति न तो सिया ही हो सकता है न राम ही हो सकता है न कोई कृष्ण हो सकता है। इसलिए कृष्णमय दर्शन का ये अर्थ है जो कुछ हम देखते हैं कृष्ण से ही हुआ है इसलिए कृष्ण की स्मृति आती है हमारा के शरण में वो होता है। सर्वत्र राजा कृष्ण अपने इष्ट देव को देखता है, इसके अंदर इष्ट देव को देखता है, किंतु हम अपने को सीता राम में देखता है या दूसरों को इस विश्वास की तरफ संभव आज तक कोई क्या नाम हुआ हनुमान जी नहीं हुए, लक्ष्मण जी नहीं हुए, तो और कौन हो सकता? शंकर जी क्या सीता जी हो गए या राम हो गए या कृष्ण बन गए? गोपीश्वर तो बन गए, गोपीश्वर बन गए हैं, ये बात तो ठीक है। गोपीश्वर माने गोपी का अविष्कार था, किंतु कृष्ण बन गए? आज तक कोई नहीं बन सकता, यही भ्रम धारणा है, यही अद्वैत वादियों की कष्ट कल्पना है। इससे बचे सियाराम के पक्ष बनो, राम के पक्ष। मैं रघुपति रघुपतिपति मोरे, यही भाव जाए जन होरे। मैं सियाराम का दास हूं, जन्म जान नाम करने यह भाव हमारा भूल न जाए। जब मैं सीता हो गया, राम हो गया, हनुमान जी अपनी पूछ से वो लपेट करके ऐसे मारे जो वो रसातल में जाएगा ऐसे लोगों को, इसलिए सियाराम करने की चेष्टा में ऐसा जो कहते हैं कि नमो नारायण कहो, ओ भक्त उसमें मैं भक्त हूं, सेवक उसमें दास उसमें दास उसमें नारायण का दास नारायण नहीं। जो कहते हैं उसको कहने दीजिए अपने अपराध से मरे। इसलिए अब आगे हम चलते हैं भक्ति का विवेचन करते थे, जिसमें पहले बतलाया प्रहलाद महाराज इत्यादि भीषण पितामह इत्यादि ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी भक्त मैंने श्रवण करने प्रभु को देखते हैं, इसलिए ये भगवान की कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान चिंतन स्मरण कीर्तन ये करते हैं। इसके बाद में शुद्ध भक्त हमने अम्बरीश महाराज जी को बताया, जिसका भागवत में बन। अब इसके बाद प्रेमी भक्त हनुमान जी का नंबर आता है, उन्होंने शादी की, शादी तो की है, बाल बच्चे हैं, इसलिए उनका अखंड प्रेम राम के चल रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह नहीं थे, चलते फिरते उठते बैठते सोते सीखते फिसलते सब समय राम ही राम राम ही राम 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 करते। इनका हृदय राम है, राम से भरा हुआ है, राम की सेवा छोड़ करके कुछ नहीं लिए जाते। एक समय सीता जी ने कहा, प्रस्ताव रखा, उस सभा में भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे, सीता जी थे। सीता जी ने एक प्रस्ताव, ये बंदर कहां से आ गया, हमारी सारी सेवाओं को छीन लिया हमसे और हमें किसी सेवा में भी अपने नहीं रहने दिया। दिन में रात में सवेरे शाम को ऊपर नीचे भीतर बाहर बस यही बंदर ही बंदर ये सेवा करता है और हम लोगों को कोई सेवा छोड़ता नहीं कि हम सेवा करें। एक बात किया, अब हम चारों आदमी हैं, चारों मिल करके सेवा ऐसा दिन रात का बांट ले जो इस बंदर के पक्ष में एक मिनट की भी सेवा न आए, कैसे हो? सीता जी ने कहा, रात की सेवा हमको दी जाए उसमें कोई नहीं आए, हनुमान को खुश ले लीजिए, और बाहर में जाने पर लक्ष्मण जी के साथ है और कोई जरूरत तो भरत और शत्रुघ्न है, किंतु ये बंदर नहीं आए, लंगूर नहीं आए। ऐसा ही किया, सारी सेवा उन्होंने बांटी, सवेरे से शाम और शाम से सवेरे तक की रात तक की तक। हनुमान जी बड़े दुखी थे, मैं तो सेवा के बिना एक सेकेंड नहीं जी सकता। गए लोगों से कहा, आपके चरणों में हमारा विशेष निवेदन है, आप लोग मुझे कोई भी एक छोटी से छोटी सेवा दे दीजिए, नहीं तो मैं मध्यम वर्ग में दसूंगा नहीं, और इसका पाप आप लोगों के मत में पड़ेगा, उन लोगों ने अभी कोई सेवा नहीं बची है, हम अपनी सेवा में कटौती नहीं करेंगे, हम लोग ऐसी सेवा करेंगे, तुम बैठ करके राम राम करो और कोई सेवा नहीं। ये गए फिर बोले, अच्छा एक बात करो, कोई सेवा तो दिया नहीं हमको, एक छोटी सी सेवा मैं मानता हूं। रामचंद्र जी को कभी कभी जंघाई आ सकती है, उसमें चुटकी बजाने का काम मेरा है, ये मैं कहता हूं। इसलिए जब जंघाई हम लेते हैं तो अवसावधान हो जाते हैं, इसलिए उस समय में भगवान का नाम हरी 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 चुटकी बजा करके करना चाहिए या राम राम जाता। तो ये चुटकी बजाने का काम मेरा है। उन्होंने कहा कि हम लोग सहर से स्वीकार करते हैं, क्योंकि राम को कभी आज तक जम भाई हमने देखी नहीं, जो राम को कभी जम भाई आती है तो ठीक है, ये सेवा उनको दे दिया। हनुमान जी की बहुत आप लोगों की विशेष कृपा है, घर में नहीं जाना होगा तो ठीक है, मैं चौक से पर बैठा रहूंगा, घर के बाहर चौकस पर बैठा रहूंगा। और उन्होंने बैठ करके चुटकी बजाना आरम्भ, और राम को जम भाई को जम भाई आने लगी, दिन रात देखा नहीं, सारी रात सारा दिन वो चुटकी बजाते रहे, राम जम्भाई करते रहे, अब इसकी सेवा जितनी थी सब ठप हो गई, कोई सेवा नहीं करते कि जम्भाई आ रही है। अब देखा तो बड़ी भारी चिंता हुई है, मुझे क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये तो हनुमान दे दो, सब समय चुटकी बजाता हूँ तो जम्भाई आती है। मैंने कहा चुटकी क्यों बजाता है, वो तो अभी जम्भाई लेंगे तब तो बजा, भाई हमको तो घर के अंदर में जाने नहीं दे रहे, तो मैं बात में कैसे कह दू बाकी वो कब जब भाई लेते हैं नहीं है, ये कब आ जाएगी, पहले नहीं चुटकी बजा। अंत में बात बहुत करके हनुमान की पहले की जो सेवा की स्थिति थी उनको बजाय करने पड़ी, नहीं तो राम के मंदिर को बड़ा कष्ट, हनुमान जी के बिना राम जी नहीं रह सकते, जैसे राम के बिना हनुमान नहीं रह सकते, हनुमान के बिना भी राम नहीं रह सकते। आप लोग देखे हुए देश में विदेशों में सर्वत्र सीता जी की अलग मूर्ति नहीं, लक्ष्मण की भरत की शत्रुघ्न की अलग मूर्ति, विशेष विशेष जगहों में जैसे मथुरा में शत्रुघ्न गोपाल है, ऐसी किसी नहीं तो नहीं। और हनुमान जी की गली गली में अली गली में ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई गली नहीं, यहां तक कि जयपुर के मार्ग में यहां कहां जहां कहां सड़क को रोक करके भी उनको हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये प्रेमी भक्त बिना भगवान की सेवा के एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। बहुत ही हमने बतलाई है उनके संबंध में, एक समय लंका विजय के बाद में रामचंद्र जी आए, अभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठे, और बंदर और कपि भालू इत्यादि जो आए थे देश विदेश से उनको पूजा करना है, कोई ज्ञान भी चाहता है राम को स्नेह से, और इनको ये भेजना चाहते हैं कि आओ अपने परिवार के पास में, बहुत दिन हो गया हमारे पास, सबको भेज रहे हैं और किसी को कुछ दे रहे हैं बाहर, किसी को कुछ दे रहे हैं, सबको बाहर से दे करके और जबरदस्ती उनको भेज रहे हैं। हनुमान सबको भेजने के पश्चात हनुमान जी रह गए, इनको भेजेंगे तो इनका परिवार कहां है, जो परिवार थे वो राजनीति के परिवार है, इसे भेजने का प्रश्न नहीं। किंतु इन्होंने रावण के साथ में युद्ध में बहुत ही काम किया, सीताजी की खोज इन्होंने की, उनके पुत्रों को रावण के पुत्रों को इन्होंने मारा, खोज लगा करके आए और फिर युद्ध किया, इसलिए इनके ऋणी है सभी, राम ऋणी अपने हनुमान से। जब इनकी इनको बुलाया गया तो हनुमान जी आए, तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी ने देखा इसको मैं क्या दूं, मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी जो साधना हृदय दे रखा है अब और मैं क्या हूं, तो सीताजी की तरफ में उन्होंने देखा। सीताजी ने क्या किया, विवाह का समय था, नौलखा हार होता हीरा जवाहरातों से परिपूर्ण अमूल्य उस रत्न को निकाल करके और हनुमान के गले में सीताजी ने डाल दिया। जाने के बाद में हनुमान जी प्रसन्न तो हुए किंतु इसकी एक एक मनिया को काट करके जैसे बंदरों का स्वभाव होता है वो देखने लगे। एक एक करके तपड़ियों को मनियों को उन्होंने तोड़ डाला और फेंक दिया। रामचंद्र जी हंसने लगे और सब लोग हंसने लगे। रामचंद्र जी बोले आए तो पहचाने भाई, सीता जी ने इतना प्रिय हार जो उनका प्राणों से भी प्रिय था तुमको दिया, तुम पत्थर की भांति तोड़ करके फेंक रहे हो क्यों? सब लोगों को कौतूहल था। उन्होंने कहा मैं देख रहा था इसमें राम नाम है कि नहीं, किंतु मैंने देखा कि राम